नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं, आद्य शक्ति गायत्री की समर्थ साधना। ये पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है और ये उनकी 1988 से 90 के बीच की जो क्रांति धर्मी साहित्य पुस्तक माला थी ना, उसी का एक हिस्सा है।
हाँ, और ये वो साहित्य है जिसे पूज्य गुरुदेव ने अपना ज्ञान शरीर कहा था।
बिल्कुल, उन्होंने आग्रह भी किया था कि इसे, उनके इस ज्ञान शरीर को जन जन तक पहुँचाया जाए। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पुस्तक के जरिए गायत्री साधना के असली मर्म को समझें।
जी,
पुस्तक शुरू में ही एक बड़ी बात कहती है कि ये जो 24 अक्षर का गायत्री महामंत्र है, ये सिर्फ कोई मंत्र नहीं है।
हाँ, ये तो जैसे भारतीय संस्कृति और ज्ञान का आप कह सकते हैं केंद्र है, नाभिक है।
और इसे दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे पूरा, मतलब समग्र धर्मशास्त्र भी कहा गया है। पर इसमें सबसे खास बात क्या लगती है?
को दोहरा लेना, अम रट लेना, वो काफी नहीं है।
अच्छा,
गायत्री साधना का जो असली मतलब है वो है इसके पीछे का जो तत्व ज्ञान है, जो फिलॉसफी है, उसे समझना।
हृदयंगम करना।
हाँ, उसे दिल में उतारना और फिर अपने व्यक्तित्व को, अपने कैरेक्टर को उसके हिसाब से ढालना, बेहतर बनाना, मतलब ज्ञान को जीवन में लाना जरूरी है।
बिल्कुल सही। पुस्तक में कथा भी आती है गायत्री और सावित्री के प्रकट होने की।
हाँ,
ब्रह्मा जी वाली कथा।
हाँ,
कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत में तप किया तो आकाशवाणी से उन्हें गायत्री मंत्र मिला, और फिर जब उन्होंने साधना की तो गायत्री दो रूपों में प्रकट हुई।
जी, एक तो तत्वज्ञान स्वरूप में जिन्हें गायत्री कहा गया, और दूसरी भौतिक शक्ति के रूप में सावित्री।
ये कितना सिंबॉलिक है ना, मतलब जैसे जीवन को चलाने के लिए आध्यात्मिक समझ भी चाहिए और दुनिया में जीने के लिए भौतिक साधन, भौतिक प्रगति भी जरूरी है। दोनों पहिए चाहिए।
एकदम सही कहा। और गायत्री को त्रिपदा क्यों कहते हैं, यानी तीन चरणों वाली, इसका भी पुस्तक में बहुत गहरा अर्थ समझाया गया है।
हाँ, वो तीन चरण क्या है?
असल में ये तीन धाराएं हैं जिनका संगम है गायत्री। पहला है सविता, मतलब सूर्य देव, उनके तेजस का वरण करना,
यानी जीवन में ऊर्जा, तेज, हिम्मत,
ये सब।
वाह,
प्रतिभा, शौर्य। दूसरा है देवत्व का वरण, यानी अपने अंदर शालीनता, उदारता जैसे दैवीय गुणों को लाना।
और तीसरा, वो तो सबसे महत्वपूर्ण लगता है।
हाँ, वो है धियो यो न प्रचोदयात। और यहाँ न यानी हमारी पर जोर है, सिर्फ मेरी बुद्धि नहीं बल्कि हम सबकी, पूरे समाज की, पूरी मानवता की सद्बुद्धि को जगाने की प्रार्थना।
वाह, ये तो एक तरह की आध्यात्मिक त्रिवेणी हो गई।
जी बिल्कुल, जिसमें नहाकर व्यक्ति सही मायनों में निखर सकता है।
पुस्तक में यज्ञोपवीत का भी जिक्र है, जनेऊ का। उसके 9 धागों को 9 सद्गुणों से जोड़ा गया है।
हाँ, वो भी बहुत सुंदर विश्लेषण है, जैसे परिश्रम, विनम्रता, बचत, सुव्यवस्था, फिर उदारता और सहयोग, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इन धागों को पहनना सिर्फ एक रस्म नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये असल में इन गुणों को, इन जिम्मेदारियों को अपने जीवन में धारण करने का प्रतीक है। यही गायत्री को जीवन में उतारना है।
और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है ना, साधना और सिद्धि के बारे में।
हाँ, पूज्य गुरुदेव यहाँ एक शर्त सी स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि गायत्री साधना से ये सद्गुण तो आते हैं, विकसित होते हैं, लेकिन जो गायत्री की रिद्धि सिद्धियां हैं, जो आध्यात्मिक शक्तियां या सफलताएं हैं,
वो किसे मिलती हैं?
वो केवल उन्हीं को मिलती हैं जो इन सद्गुणों को अपने जीवन में सच में उतारते हैं। मतलब व्यक्तित्व का परिष्कार, जिसे आत्मशोधन कहा गया है, वो साधना का पहला और सबसे जरूरी कदम है।
यानी सिर्फ पूजा पाठ कर लेना काफी नहीं है?
बिल्कुल नहीं। अगर आचरण शुद्ध नहीं है तो साधना का पूरा फल नहीं मिलता। जैसे बिजली के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तार सही जुड़ने चाहिए, वैसे ही यहाँ साधना और सदाचरण का मेल जरूरी है।
ये बात बहुत जरूरी है समझना। पुस्तक एक और गलत धारणा को तोड़ती है।
कौन सी?
यही कि गायत्री साधना सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए या सिर्फ पुरुषों के लिए।
हाँ हाँ, ये भ्रांति तो बहुत फैली हुई थी। पूज्य गुरुदेव ने इस पर बहुत जोर दिया कि ये साधना सबके लिए है, हर नर नारी बिना किसी भेदभाव के इसे कर सकता है।
तर्क भी कितना सुंदर दिया है, गायत्री तो स्वयं माँ का रूप है।
तो माँ की गोद में तो सभी बच्चे बैठ सकते हैं ना, बेटियां क्यों नहीं, ये तो बहुत स्वाभाविक बात है।
सही कहा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए गायत्री और यज्ञ को भी जोड़ा गया है।
जी, उन्हें एक दूसरे का पूरक बताया है, जैसे भारतीय संस्कृति के जनक और जननी हो, प्रकृति और पुरुष की तरह।
इसीलिए शायद दैनिक साधना में दीपक या धूप बत्ती जलाने को कहा जाता है, अग्नि के साक्षी।
हाँ, और पुरश्चरण जैसे बड़े अनुष्ठानों के बाद हवन का विधान भी इसीलिए है। यज्ञ तो हमारी संस्कृति का मूल है। और पुस्तक में शांति कुंज जैसे सिद्ध तीर्थों का भी जिक्र है, जहाँ का वातावरण साधना के लिए विशेष रूप से सहायक होता है,
क्योंकि वहाँ करोड़ों जप हो चुके हैं, नित्य यज्ञ होता है।
जी, उस ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है।
तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो आद्य शक्ति गायत्री की समर्थ साधना क्या सिखाती है?
संक्षेप में, ये पुस्तक सिखाती है कि गायत्री सिर्फ मंत्र नहीं है, ये एक पूरा जीवन जीने का तरीका है। एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें ज्ञान भी है, तत्वज्ञान, कर्म भी है, सद्गुणों को जीना और उपासना भी है, साधना।
और इसका लक्ष्य सिर्फ अपना भला नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य है व्यक्तिगत सुधार के साथ साथ सामूहिक सद्बुद्धि का विकास, ताकि व्यक्ति भी उठे और समाज भी उठे। ये एक यात्रा है, अपने आप को शुद्ध करने से सिद्धि पाने तक की, आत्मशोधन से सिद्धि तक।
पूज्य गुरुदेव की ये विवेचना सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है। अगर गायत्री साधना का मूल तत्व, जैसा आपने कहा, व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर सद्बुद्धि को जगाना है, मतलब सही और गलत में फर्क करने वाली बुद्धि।
जी, विवेक बुद्धि।
हाँ, विवेक बुद्धि। तो आज की दुनिया में इतनी सारी चुनौतियां हैं, इतनी जटिलता है, तो हम, मतलब आम इंसान, औपचारिक साधना के अलावा अपने रोज के फैसलों में, अपने व्यवहार में इस विवेकशीलता को और ज्यादा सक्रिय रूप से कैसे जगा सकते हैं, कैसे लागू कर सकते हैं?
ये सोचने वाली बात है,
ये चिंतन का विषय है।
ये विश्लेषण पूज्य गुरुदेव की पुस्तक आद्य शक्ति गायत्री की समर्थ साधना पर आधारित था।